रात का क्लास चल रहा था 19/6/1966 रविवार को चौथे पेज के अंत में बात चल रही थी त्रेता के पीछे आते हैं चंद्रमन वो इस्लामवंशी त्रेता में है चंद्रवंशी तो देखो पीछे कोई है कुछ ना कुछ न कुछ तो है वो कोई धर्म नहीं है धर्म अर्थात धारणा वाले तो बाप समझाते रहते हैं अभी त्रेता के अंत में कोई प्रलय तो होती नहीं है प्रलय अर्थात प्रकृष्ट रूपेण लय लीन हो जाए और बच्चों को समझाया है कि शास्त्र में है महाप्रलय की बात तो प्रलय और महाप्रलय में अंतर हुआ ना ६६ की वाणी का पांचवा पेज तो बाप कहते हैं महाप्रलय कभी होता ही नहीं है ये खंड कभी भी विनाश नहीं होता है क्योंकि यहाँ सत्यखंड स्थापन होता है सत्यखंड सतयुग को कहा जाता है तो इसको अविनाशी खंड क्यों कहा जाता है क्योंकि अविनाशी बाबा यहाँ आते हैं कौन आते हैं अविनाशी बाबा अविनाशी बाबा आते हैं या अविनाशी बाप आते हैं आत्माओं का है? बाबा कहा जाता है निराकार और साकार के मिल को साकार है मनुष्य सृष्टि का बीज और बीज का कभी विनाश नहीं होता है तो बाबा अविनाशी है ये उनका बर्थ प्लेस है ना उनका क्यों कहा है? उसका क्यों नहीं क्योंकि एक आत्मा नहीं है दो आत्माएं हैं बाबा ने समझाया ये भारत बर्थ प्लेस है ना तो अभी हमको खुशी होती है ओहो बाबा का ये बर्थ प्लेस और वो बाबा क्या करते हैं? तो बाबा सर्व का सदगति दाता, सर्व का दुख हरता और सुख करता, शांति करता, ये याद रख देना। सर्व का दुख हरता और फिर सबका सुख और शांति करता, सर्व का दुख हरता। सर्व में तो 500-700 करोड़ सब आ गए, सबका दुख हरता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमको कोई दुख नहीं, हम तो सुख में ही हैं। तो उनका दुख हरता कैसे कहा जाए? हैं? भले अभी हैं सुखी, अपन को समझते हैं हम सुखी हैं, लेकिन आगे ऐसा समय आने वाला है इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं रहेगा, सब दुखी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि माया विकराल रूप धारण करती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकराल रूप धारण करते हैं और फिर अंत में माया के साथ प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है, तामसी बन जाती है। तो प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व बहुत दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए कहा सबका दुख हरता है और सबका सुख शांति करता। सबको दुख से छुड़ाता है, माने सबको गति देता है, मुक्ति देता है। इस समय जो भी है वो आएंगे ना, बोलेंगे शांति चाहिए शांति चाहिए, बस हमें शांति चाहिए। तो आत्मा को शांति क्यों याद आती है? घड़ी घड़ी याद आती है, शांति की ही याद क्यों आती है? बुखार बहुत जोर से चढ़ता है, हड्डी हड्डी टूटती है। तो कोई कहता है हमको सुख चाहिए, है? उसके मुंह में रसगुल्ला रख दो, खाएगा? क्या कहेगा? शांति चाहिए पहले। तो बताया कि शांति को ही क्यों याद करते हैं, क्यों याद आती है? क्योंकि शांति तो घर है ना, सभी बच्चों का घर है और बाप का घर है। घर किसको नहीं याद आता है? विलायत में जाते हैं तो क्या घर भूल जाते हैं? अरे बच्चे, विलायत में तो ऐसे ऐसे हैं कि बोलते हैं हम मरेंगे तो हमारे शरीर की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी वहीं जाना चाहिए। कहाँ? हमारे घर में जाना चाहिए। तो देखो मिट्टी भी ले आते हैं, ये क्या बात हुई, इसकी शूटिंग कैसे होती है, हैं? विलायत में मरते हैं तो जो शरीर रूपी मिट्टी है वो भी अपने देश में ले जाते हैं। कहाँ की यादगार है, कैसे है? तुम बच्चे परम नाम को हैं इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो जिस सृष्टि पर परम नाम उतरा हुआ होगा सब चाहेंगे ना, क्या चाहेंगे कि हम इस सृष्टि में जहाँ परम धाम है वहाँ शांति में पहुँच जाएं और देह सहित तो पहुँच जाएं, या देह को त्याग करके पहुँच जाएं, देह सहित तो पहुँच जाएं। तो देखो परम धाम में तो सभी आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो वहाँ शरीर भी पहुँच गया ना। उस दुनिया में तो शरीर खत्म करके ले आते हैं, या तो शरीर को ही ले आते हैं, एरोप्लेन में डाल करके ले आते हैं कि हम अपने इस खंड में जावे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि सबको अगर मालूम होगा कि हमारा सर्व का सदगति दाता, शांति का दाता, सुख का दाता, इस दुख से हमको मुक्त करने वाला है, तो बताओ बच्ची ये बहुत बड़ा भारी तीर्थ, और बड़ा भारी तीर्थ के लिए यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, कोई भी मंदिर उस मंदिर की मूर्ति को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा और सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे। तो कोई कोई तो ऐसे मंदिर को हाथ भी लगा नहीं सकेंगे। मूर्ति को हाथ लगाना तो दूर की बात, एकदम मत्था टेक शिव के ऊपर सब आकर के फूल चढ़ावेंगे, एक शिव के ऊपर। भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना। अभी तो देखो कितना फूल चढ़ाते हैं, अभी गांधी के ऊपर चढ़ावेंगे, फलाना के ऊपर चढ़ावेंगे, कौन बेचारा दूसरा था, शास्त्री, शास्त्री के ऊपर भी फूल चढ़ाते, फिर फलाने फलाने के ऊपर। तो जो जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो आते उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। समाधि किसकी यादगार है, हैं? सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर, जो शरीर छुड़ा करके संपूर्ण अंदर की ओर चले गए, समझते हैं निर्वाण को पा गए। तो समाधि नाम दे दिए, और फिर उनकी समाधि के ऊपर क्या चढ़ाना है? जो सर्व की सदगति दाता, जो शांति मुक्ति देते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं, फूल तो उसे एक के ऊपर चढ़ाना होता है ना, उसे एक का तो नाम निशान गुम कर दिया। नाम निशान गुम कर दिया, है? अरे शिव के मंदिर में जाते हैं, माँ शिव के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते हैं क्या? तो नाम निशान गुम कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ है? किसके ऊपर फूल चढ़ाने जाते हैं? हैं? फूल किसकी यादगार है और कांटा किस बात की यादगार है? हाँ, पवित्र रूपी जो कन्या है वो फूल है, पवित्रता ही फूल है। तो फूल चढ़ाते हैं, क्या शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं? हैं? जो पवित्र है वो सुखदाई है, या जो अपवित्र है, विविचारी है, वो सुखदाई है? पवित्र सुखदाई है, तो वो सुख है? शिव ज्योति बिंदु लेता है क्या? है? किसके ऊपर चढ़ाते हैं? कोई नहीं जानता है किसके ऊपर चढ़ाते हैं, ये भक्ति मार्ग में कोई नहीं जानता। जानते नहीं है कि वो लिंग क्या है और उसमें जो बिंदु रखा है वो क्या है, बस बोल देते हैं शिव के ऊपर फूल चढ़ाते। अब शिव भोक्ता है या अभोक्ता है? शिव तो अभोक्ता है। वास्तव में समाधि संपूर्ण अंदर की ओर जाना, ये तो उस एक का काम है। शिव तो सदैव ही अंदर है कि बाहर है? वो तो डायरेक्टर है। डायरेक्टर सदैव पर्दे के पीछे रहता है या बाहर रहता है? वो तो पीछे रहता, गुप्त रहता है, वो सदा ही अव्यक्त है। तो बात है, वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो मुकर्रर रथ है संपूर्ण आधे, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर, आत्मा की संपूर्ण गहराइयों तक जाता है। अर्थात आत्मा के 84 जन्मों की कहानी, 84 जन्म का पाठ गहराई में जाकर के प्रत्यक्ष कर लेता है। इस बात की गहराई में, आत्म की स्थिति की गहराई में, तो उस ऐसे एक का नाम तो गुम कर दिया। नाम तो क्या, नाम निशान गुम कर दिया। कब की बात है, यज्ञ के आदि में उस एक की लाश ही गुम कर दी। सारी दुनिया एक ओर हो गई और वो आत्मा एक ओर हो गई। इतना भारी विरोधाभास पैदा हो गया। तो देखो, सुख और शांति देने वाला, उनका नाम निशान गुम कर दिया। इसको क्या कहेंगे, ये भी तो ड्रामा हुआ ना। तो बाप समझाते हैं, बरोबर मेरा नाम निशान गुम कर दिया। परंतु मैं हूं ना सभी का सर्वगति दाता, सर्व का सदगति दाता। अभी तुम जानते हो कि वो सर्व का सदगति दाता है। सर्व का शांति दाता है, और तो दुनिया में कोई नहीं जानते। तो जो जो जानते जाते हैं, वो बाप से आकर के वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ना बच्चों को, बच्चे एक तो मैं हूं बच्चों को सुख देने वाला, मेरा नाम ही है दुखहर्ता, सुखकर्ता। अर्थात दुख की दुनिया से लिबरेट करके क्या करेंगे, है दुख की दुनिया से लिबरेट करके शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। तो ये बात तुम जानते हो कि दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे। तुम जानते हो कि शांति धाम में शांति है, सुख धाम में सुख है। तो बस शांति धाम की भी जगह अलग हो गई और सुख धाम की भी जगह अलग हो गई, बाकी क्या रहा है। शांति धाम अलग, सुख धाम अलग, फिर क्या रह गया, दुख धाम रह गया। तो ये है दुख धाम, इसको दुख धाम कहेंगे ना, इसका नाम ही है दुख धाम। इस दुख धाम में सदा काल कोई भी सुखी रह नहीं सकता। अगर कोई बहुत धनवान है तो उसको कहा जाता है सन्यासी। खुद कहते हैं ये सुख अल्पकाल क्षण भंगुर कागविष्ठा समान है, क्योंकि उसमें भी तो बीमारियां सीमारियां झगड़ा वगैरह देखो कितना राजाओं को कितना झगड़ा रहता है, कितने युद्ध होते रहे। तुम सुनते हो, एक बस्तर का महाराजा था, गोलियों का शिकार हो गया, समझा ना। लोग तो समझते हैं राजा है बहुत सुख भोगते। अभी देखो उस बस्तर के राजा की क्या राजाई रही जो गोलियों से भून दिया गया। गोलियों से भून कर वो फिर लाठियों से, लातों से ठुकराते रहते हैं। अब बताओ उस राजा की क्या इज्जत रही। इस दुनिया में कोई की है इज्जत? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, उनकी नाक में पत्थर मार दिया, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। क्या रहा प्राइम मिनिस्टरी का सुख? इस दुनिया में कोई की है इज्जत? एक गृह मंत्री था, उसकी बेटी को डकैतों ने किडनैप कर लिया। गृह मंत्री, पूरे देश की पुलिस उसके ऊपर का कुर्सी नसीन, गद्दी नसीन। किसी की भी कोई इस दुनिया में इज्जत नहीं, कुछ भी इज्जत नहीं। और इस दुनिया में इज्जत के पीछे लोग कितना मरते हैं। अरे इस दुनिया में आकर के बाप की ही कोई इज्जत न रही। बेहद का बाप, ऊंचे के ऊंचा बाप, तो फिर और किसकी इज्जत रहेगी? कुछ भी नहीं, कोई की भी इज्जत नहीं रखते हैं। जरा गांधी जैसा बापूजी, भारत का एकदम, देखो कोई आया गोली लगा दिया, भारत के लोग गांधी जी की कितनी इज्जत करते थे। तो देखो अभी कोई की इज्जत साथ में नहीं है, चाहे कोई भी है उनको ये डर लगा रहता है। तुम देखते हो बड़े बड़े एकदम बड़े, अरे बहुत करोड़पति पद्मपति ये जो होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े बनते हैं ना, इनके पास बहुत धन होता है। बस आज बेचारा घूमने गया, कल आया उनकी बादशाही से वापस। अब तुम तो बादशाह नहीं हो, वो तो जाकर के दूसरा बना। तो देखो दुनिया का ये हाल है। तो इस दुनिया में सबको दुख हुआ ना, तो नाम क्या दे दिया, दुख दहम। सबको दुख ही दुख है यहाँ, कोई भी इतना सुख देख नहीं सकते हैं जितना सुख वेद के बाप की बनाई हुई सुखधाम की दुनिया में सुख होता है। कितना अच्छा मीठा नाम है सुखधाम, स्वर्ग, बैकुंठ। १९६६ की वाणी का छठा पेज। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बस बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। वो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता है, और तुम्हारा तो जो आर्गन्स हैं, आत्मा कोई छोटी बड़ी तो नहीं होती है। जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाते हैं, कर्मेंद्रियां बड़ी होती जाती हैं। तुम जानते हो कि जैसे जैसे बड़ा होता है तैसे वो बच्चा, वो आत्मा अच्छी तरह से बोलने लग जाती है। आगे तो देह अभिमानी था, बच्चा बोलता है अभी सीख रहा है फलाना हो गया है, नहीं अभी तुमको मालूम हुआ कि आत्मा ही कहती है कि मेरा शरीर अब छोटा है, आत्मा कहती है हमारा शरीर अब जवान है, आत्मा ही कहती है मेरा शरीर अब वृद्ध है। तो अभी ज्ञान ये बाबा सिखलाते हैं, क्यों बाबा ने कहा कि सतयुग में ये आत्मा का ज्ञान है। वो देवताएं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा शरीर छोटा है, हमारा शरीर युवा बनेगा, हमारा शरीर जब वृद्ध बनेगा हम फिर वो शरीर छोड़ करके दूसरा ले लेंगे। तो उसको कहा जाता है आत्माभिमानी, पीछे परमात्मा अभिमानी, यानी मैं परमात्मा को जानता हूँ। वो बात तो कोई को फिर मालूम नहीं है इस दुनिया में, इसलिए तुम हो सबसे जास्ती नॉलेज होल। तुमको कहा जाता है नॉलेज होल। बाप की जो भी महिमा है, यानी नॉलेज होल नहीं बने हो तो बाकी थोड़ा रोज है। बच्चों को नॉलेज क्यों नहीं है, देखो कितनी नॉलेज है। तुम ये नॉलेज कितने बड़ों बड़ों को सुनाते हो, इसका नाम ही अलग है, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। इसके अक्षर का नाम ही है रूहानी नॉलेज, जो रूह है यानी बाप, रूहानी बाप आकर के आत्मा को नॉलेज देते हैं और एक ही बार आकर के देते हैं। तो ये नई बात हुई ना, दुनिया तो समझती है हर युग में भगवान आते, बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, तो एक ही बार नॉलेज देते हैं और फिर देते हैं 5000 वर्ष के बाद। नहीं वो तो शास्त्रों में लिख दिया है बरोबर वो देते हैं, कोई राजयोग सिखलाते हैं, परंतु उसको राजयोग सिखलाते तो लाखों वर्ष हो गए, तो घोर अंधेरा हो गया ना। तो अभी तुमको जब एक सोझरा मिला है, जाग गए हो, तो सजनिया कह देते हैं कि सजनियों का साधन एक है, जो आकर के जगाने आया है, सबको जगाने आया है। इसलिए सबको कहा जाता है ब्राइड्स, और बाप कहते हैं मैं हूँ ब्राइडग्रूम। क्या संबंध बताया है? साजन और सजनी का संबंध बताया, लेकिन बाप तो कहते हैं मेरा नाम क्या है? आत्माओं का बाप क्या कहते हैं? जो ज्ञान सुनाते हैं वो क्या कहते हैं? मेरा नाम है शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और तुम बिंदी बिंदी आत्मा मेरे बच्चे हो, बच्चियां भी नहीं, तो मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है? बाप और बच्चे का संबंध, दूसरा कोई संबंध है? होता ही नहीं। तो दूसरा जब कोई संबंध होता नहीं, तो ये साजन और सजनी ना संबंध कहाँ से हो गया है? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। तो मैं आकर तुम बच्चों को जगाता हूँ, तो मैं हो गया तुम्हारा साजन, ब्राइडग्रूम, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ तो फिर साजन भी हूँ। वो कहा भी जाता है पतियों का पति, बापों का बाप और गुरुओं का गुरु। तो ऐसे क्यों कहते हैं? अरे सबका बाप भी, बापों का बाप भी वही है, टीचर्स का टीचर भी वही है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है, उसको कोई टीचर नहीं कर सकता, उसकी कोई सदगति नहीं कर सकता, उसकी सदगुरु की, सदगुरु की कोई सदगति नहीं कर सकता, और वो सदगुरु साकार है या निराकार? सदगति साकार में होती है या निराकार को सदगति कहें? तो ये गुरुओं का गुरु भी है, क्योंकि एक ही गुरु है, सर्व गुरुओं की सदगति दाता। ये ज्ञान की बात हुई। तो बाप कहते हैं तुम कोई भी ये शास्त्रों की ज्ञान की बातें जो समझाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग है, ये सब जो कुछ भी कहते हैं ये सभी असत्य कहते हैं, ये सब झूठी बातें। अभी तुम इन झूठी बातों को समझ गए। अभी देखो बरस बरस अमरनाथ का मेला, सब का मेला लगता है, बद्रीनाथ का मेला, फलाने का मेला। अभी ये सब क्या है? ये मेला सत्य है? बाबा बोलते हैं ये बिल्कुल झूठ है, ये मेला वेला कुछ है ही नहीं। क्या अमरनाथ पर ऊपर जाते हैं अमृत के पीन अमृत पीने के लिए जो अमर बन जाते हैं है? भक्ति मार्ग में जो पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं अमरनाथ में वहाँ अमर बनने के लिए जाते हैं है? तो क्यों जाते हैं इस बात की यादगार है हाँ, यह संगम युग में जब बाप आकर ज्ञान देते हैं तो तुम आत्म की स्थिति में ऊंचे जाते हो। वो है अमरनाथ पहाड़, उस भक्ति मार्ग के पहाड़ पर जाने में तो कितना खर्चा होता है और कितना गवर्नमेंट को प्रबंध करना पड़ता है, कितनी तकलीफें होती हैं। अभी तो फिर भी सुख कर दिया है परंतु आगे तो बहुत दुख था। कोई की हड्डी टूट जावे, गिर जावे, अन्न न मिले, फलाना न मिले, बहुत तकलीफ होती है। इतनी बरसात पड़ जाती है। देखो वहां जब जाते हैं तो गोद में बाल बच्चा ले जाएंगे है? पहाड़ पर चढ़ने के लिए बाल बच्चा ले जाएंगे? बताओ, वहां तीर्थों पर इतना ऊंचा तो तुम बच्चियां कैसे ले जाएंगी? जब ऐसी यात्रा पर जाते हैं तो कोई न कोई को संभाल कर ले जाते हैं और बरोबर दो दो तीन तीन महीना यात्रा करते हैं, क्योंकि तकलीफ होती है बच्चों को ले जाएंगे तो बाबा कहते हैं यहाँ भी देखो तुमको तो कितना आराम से बैठ करके सुनाते। अभी छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना, क्या शूटिंग हुई है? इस बात की क्या शूटिंग होती है कि अमरनाथ यात्रा पर बच्चों को नहीं ले जाते और है? हाँ, जो कहते हैं अपन को हम अम्मा कुमार कुमारी हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं हैं? किसके बच्चे हो? हमारी अम्मा है, हम अम्मा के बच्चे हैं। अम्मा को ही जानते हैं, बाप को जानते नहीं। इतने छोटे बच्चे हैं जिनको बाप की नॉलेज है ही नहीं, तो उन छोटे बच्चों को ऊंची स्टेज के पहाड़ पर चढ़ने के लिए संगम युग में नहीं ले जाते। इसलिए भक्ति मार्ग में जब अमरनाथ पर जाते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं ना, गोद के स्थूल बच्चे, उनको पहाड़ पर नहीं ले जाते। अभी तुम तो छोटे बच्चे नहीं हो ना, तो तुमको सुनना है। जबकि तुम तीर्थों में जाते हो और बच्चों को कोई न कोई प्रबंध छोड़कर आते हो और यहाँ तुम आते हो ज्ञान सुनने के लिए, योग सीखने के लिए, यहाँ तो जब बैठते हो, जब बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो चू चाह भी नहीं होती है। ये कोई यहाँ से उठते हैं तो अटेंशन चला जाता है बाबा का, की वाणी का सातवां पेज। यहाँ देखते हैं तो बुद्धि का योग जैसे कि टूट जाता है, तो यहाँ शांति से अच्छी तरह से बैठ करके क्लास में रहना चाहिए। देखो टीचर बैठते हैं, जब सुनाते हैं तो अटेंशन, टीचर सुनाते हैं और बुद्धि अटेंशन में रहती है, बाबा कहते हैं ज्ञान में ज्ञान सहज है वास्तव में, क्योंकि बाबा कहते हैं अच्छा चलो ऐसे करते रहो, कुछ भी करते रहो, टूल से काम करते रहो, भले देखते भी रहो, मैं ये औजार बनाता हूँ, अच्छा हम बनाता हूँ, हमारा बुद्धि का योग बाप के पास रहे, क्योंकि से कमाई से ये जो हम बैठ करके कमाई करते हैं, हम यहाँ बाबा को याद करेंगे तो हमारी बड़ी भारी कमाई जबरदस्त है, हम एवर हेल्दी बनेंगे, एकदम निरोगी, मेरी आयु बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो ऐसे ही अपने से बात करने की भी बात हुई ना, तो बाबा सिखलाते हैं, अच्छा हम बैठ करके खाना पकाते हैं, अच्छा खाना पकाने में हाथ काम तो करेगा ना, हाथ काम करे बुद्धि भी काम करती है, पर बुद्धि को बोलते हैं कि बच्चे काम भी करो, काम करेंगे सो तो कर्मेंद्रियों से करेंगे ना, तो देह अभिमान चाहिए ना, बाकी जो तुम्हारी आत्मा है कि बाप को याद भी करो तो क्या होगा, उसी याद में तुम्हारा भी कल्याण होगा, जो चीज बनाएंगे वो चीज बड़ी शुद्ध बन जाएगी। है किसको कहेंगे योग है? बहुत कहते हैं हम बाबा की याद में थे, दूध गर्म कर रहे थे तो दूध उफन गया, दूध फैल गया, तो ऐसे होता है क्या, इसको योग कहेंगे है? क्या कहेंगे है? अरे योग है कर्म सुकौशलम, योग कर्मों में कुशलता सिखाता है, कुशल कर्म नहीं हुआ नुकसान हो गया तो उसे योग थोड़े ही कहेंगे। तो बच्ची ये याद की प्रैक्टिस है, कुछ तो मेहनत होगी ना, ऐसे थोड़े ही है बस कि वो बादशाही किसको मिल जाती है, अरे ये तो विश्व की बादशाही है, और तुम ये बनते हो। देखो तुम यहाँ आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ये कोई कम बात है क्या, कम कमाई है, 21 जन्म तुम स्वर्ग और त्रेता के मालिक बनते हो, क्योंकि ये है तो राजयोग ना, इक्कीस जन्म क्यों कहा है, सतयुग में तो 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 20 जन्म होते हैं, 12 जन्म होते हैं, तो संगम युग का सबसे ऊंचे ते ऊंचे जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा सुख भी है संगम युग का, लेकिन संगम युग के दो हिस्से हैं, एक है कलयुग और दूसरा है सतयुग, तो सतयुग आदि का जो संगम है बहुत सुख देने वाला है, तो राजाई प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आते हो, तुम्हारी बुद्धि में आया ना बरोबर हमारा ये मंदिर है, हम यहाँ राजयोग सीख रहे हैं, ये चित्र में भी ऐसे ही दिखलाया है। हम यहाँ अभी बाप को याद कर रहे हैं, किस लिए याद कर रहे हैं? है? बाप को इसलिए याद कर रहे हैं कि बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, तो हम याद करेंगे तो क्या होगा, हम भी सदैव स्वस्थिति में रहने वाले बन जाएंगे। उसका नाम ही है स्वर्ग। कहाँ गया? सही स्थिति में गया। ग माने गया, स्व माने सही स्थिति। तो हम याद कर रहे हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। अभी तुमने समझा ना, आदिदेव आदिदेवी ब्रह्मा सरस्वती और फिर प्रजापिता होने के कारण बहुत बच्ची हैं। तो सरस्वती भी बच्ची हुई ना? अच्छा, उनकी भी तो माता ये कौन? सरस्वती की माता कौन है? अरे ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे माता? वो तो पुरुष था ना। माता कैसे हो गई है? नहीं, वो ही सरस्वती शरीर छोड़ करके आत्मा रहती तो है ना इसी दुनिया में, और वो ही ब्रह्मा शरीर छोड़ करके आत्मा तो रहती है ना। तो वो आत्माएं कोई चोले में प्रवेश करती है, सरस्वती किसी बच्ची में प्रवेश करती है, और ब्रह्मा किसी माता में प्रवेश करते हैं। तो वो माता हो गई, माता सरस्वती हो गई उसकी बच्ची। अच्छा, तो उनकी ये माता ठहरी कौन? ब्रह्मा। इसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो देखो, तुम बाबा भी कहते हो और ये मम्मा भी है। कौन है? कौन है मम्मा? ब्रह्मा। ब्रह्मा को बाबा भी कहते हो और ये मम्मा भी है। और अब और आदमी बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? कौन है? प्रजापिता। फिर मम्मा का बाप कौन है? अरे वो ही प्रजापिता। और है अम्मा कौन है? मम्मा। अरे सचिव में जाकर के एक ही माँ के पेट से दोनों बच्चे पैदा होंगे ना। राधा कृष्ण एक ही बच्चे से, एक ही माँ से जन्म लेंगे ना। लेंगे या नहीं लेंगे? तो कौन? नहीं, शिव आते हैं तो कहते हैं मैं आता हूँ, तो नाम क्या रखता हूँ जिसमें प्रवेश करता हूँ? ब्रह्मा नाम रखता हूँ। तो शिव आते हैं तो क्या नाम रखा है? हाँ, आदि में। अरे प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा है? हैं? परम ब्रह्म। जिसमें आता हूँ उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा। वो पहला ब्रह्मा हुआ इसलिए परम ब्रह्म। तो वो माता भी है या नहीं है? माता भी है और पिता भी है। तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तम एक को कहा जाता है या दो चार को? एक को कहा जाता है। अच्छा, उनकी भी तो ये माता ठहरी। किनकी? ब्रह्मा सरस्वती की। इसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो देखो, बाबा भी कहते हैं और मम्मा भी कहते हो, किसको अभी किसको कहते हो? मम्मा और बाबा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। अर्धनारीश्वर का रूप देखा है, उसमें दो आत्माएं हैं या एक है? दो आत्माएं, शरीर शरीर एक है। तुम कहते हो दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड है, तो अभी नाम क्या देते हो? बाप दादा क्या है? कंबाइंड है। अच्छा, अभी तो तुम शिव बाबा को माता पिता नहीं कह सकेंगे ना, कब की बात है? छाछट की बात हुई कि अभी तुम शिव बाबा को माता पिता नहीं कह सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे है? है? हाँ, उस समय वास्तव में तो माँ का पार्ट था, बाप का पार्ट था ही नहीं। तो तुम ब्रदर्स हो और वो बाप है, वो कह के दूर कर दिया। ऐसे ही गाते हैं ब्रदरहुड, हम सब ब्रदर्स हैं, वो बाप है। अभी मुख से सभी गाते भी हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, आल ब्रदर्स। तो फिर आल ब्रदर्स का बाप भी होना चाहिए ना। आल ब्रदर्स का वन बाप। तो देखो, जब आल ये ब्रदर्स हैं और वन बाप है, तो फिर हम सबको स्वर्ग का सुख भी तो जानना चाहिए ना। एक बाप और हम सब बच्चे, ऐसे कहते हैं आकर के, जब भला बाबा है, भगवान है, हम सब उनके बच्चे हैं, तो भला हम सबको स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते? अरे, पर अभी देखो, तुम सृष्टि के ड्रामा को देखो, ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी सभी इतने धर्म भी बने हुए हैं। अभी ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी धर्म वाले स्वर्ग में आ जाएं? आ ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं आ सकेंगे है? क्यों नहीं आ सकेंगे? हाँ, ये भी बात है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबर बार उतरते हैं, तो जरूर कोई सतयुग में उतरेंगे, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में। जो एक बार उतर आते हैं, उनको फिर वापस जाने का रास्ता नहीं पता रहता, इसलिए यही जन्म लेते रहते हैं। तो जब नंबर बार ऐसे दुनिया में आते हैं, सोल वर्ल्ड से, आत्माओं के लोक से, तो जरूर है कि सब सतयुग में कैसे आ सकते? आ ही नहीं सकेंगे। इतनी सभी आत्माएं तो कलयुग में होती है ना, 550 करोड़। ये तो कोई भी नहीं समझते हैं कि पैराडाइज में जब देवी देवता धर्म में हूँ वो तो धर्म ही अलग है, उसमें तो थोड़े ही होंगे ना, जरूर थोड़े होंगे, क्योंकि ड्रामे में ये राज है। सो समझ भी कहती है तो बरोबर थोड़े होंगे सतयुग में, सब तो हो भी नहीं सकते हैं। ये ठीक है, बाप तो सबका है, परंतु होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए हैं? कि सब स्वर्ग में आ जावे, क्योंकि ड्रामा पहले से ही बना बनाया है ये धर्मों का। कौन आते हैं स्वर्ग में है? नहीं, जो स्वस्थिति में स्थित होते हैं वो स्वर्ग में आते हैं, जो देवान को छोड़ते ही नहीं, स्वस्थिति में रह ही नहीं, टिक ही नहीं पाते, वो स्वर्ग में कैसे आवेंगे? ओम शांति।